अब से सुहाने पल है जिंदगी मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं समाए हुए हैं।
ओम शांति। हम सभी ने अभी अभी बहुत सुंदर एक गीत सुना। ये जिंदगी के सुहाने पल जिसमें हम सब ने प्रभु मिलन का आनंद लिया। बाबा के घर में आप सभी इसी लक्ष्य से आए कि हम सन्मुख में बाबा से मिलेंगे, वरदानों से झोली भरेंगे। कल का दृश्य आप सबकी आंखों के सामने बार बार गूंज रहा होगा, कैसे बाबा हम बच्चों के बीच में आए और कितनी सुंदर सुंदर विशेष शिक्षाओं से सजाया, कितनी टॉपिक्स पर बाबा की मुरली चली। मैं समझता हूँ आप सभी तो पढ़ेंगे, पढ़ा भी होगा कहीं उन्हें दोबारा। कई बार सन्मुख सुनने से कुछ शब्दों में मिस होता है, अंतर पड़ता है। कोई भाई बहने समझ पाते हैं, कोई नहीं भी समझ पाते हैं, लेकिन जब उसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो उसकी गहराइयों का अनुभव होता है। तो जरूर आप सभी ने कल की मुरली आज पढ़ी होगी, रिवाइज की होगी, और नहीं की हो तो जरूर करना, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कई विषयों को हाईलाइट किया है। समय की भी सूचना दी, संगम युग का एक एक सेकंड कितना महान है, एक सेकंड भी वर्षों की प्राप्ति कराने वाला है, और साथ साथ कर्मों की गहन गति, कैसे उस पर अटेंशन देना, क्योंकि वर्तमान समय प्रकृति की हलचल बढ़ती जा रही है और उस प्रकृति की हलचल में कई आत्माएं जो दुख और शांति का अनुभव करती हैं। तो बाबा ने हम सबको पहले से ही एक इशारा दिया कि बच्चे ये कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होने का समय है, इसलिए हलचल में नहीं आना। आप बच्चों का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पर रहना और उसके लिए अपने सब खजाने भरपूर करना। तो जब से बाबा की मुरली सुनी है जरूर अंदर में उसका चिंतन किया होगा, अभ्यास भी किया होगा। एक ओर बाबा हम सबकी मनसा को और ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होने का इशारा देते हैं, क्योंकि वाणी की सेवाएं जिनका विस्तार तो खूब हो रहा है और भी होता जाएगा, लेकिन समय प्रमाण हम अपनी मनसा को शक्तिशाली बना सकें उसके ऊपर बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। चार पांच मुख्य विषयों को लेकर के बाबा की मुरली चल रही थी। समय के अनुसार पुरुषार्थ में तीव्रता आए, जैसे समय समाप्ति की ओर जा रहा है, जो दुखी अशांत वायुमंडल है उसमें और फास्ट गति हो रही है, क्योंकि समाप्ति के पहले हर चीज की अति होगी। तो ये अति ही निशानी है कि अभी हम समाप्ति के समीप पहुंच रहे हैं, और समाप्ति के बाद अति के बाद अंत और अंत के बाद आदि होगी। तो बाबा के सभी इशारों को हम सभी मिलकर के नए वर्ष में एक दृढ़ता के संकल्प के साथ अवश्य पूरा करेंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जनवरी मास के लिए कुछ होमवर्क सेवा केंद्रों पर भेज रहे हैं, क्योंकि जब नया साल और विशेष जनवरी मास शुरू होता है तो सभी सेवा केंद्रों पर एक लहर होती है। ये बाबा का विशेष अव्यक्त मास है, स्मृति मास है, इसलिए हम सबको विशेष अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, ब्रह्मा बाबा के समान बनने की रेस करनी है। तो 18 जनवरी विशेष स्मृति दिवस है, लेकिन पूरा ही मास हम सभी क्या लक्ष्य रखें, क्या चार्ट रखें, क्या पुरुषार्थ करें, उसकी पॉइंट्स सेवा केंद्रों पर ईमेल से चली गई हैं, लेकिन पोस्ट में आएंगी, पत्र पुष्प में भी। और उसमें विशेष एक लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष की मुरलियों में बाबा ने कुछ बातों पर विशेष अंडरलाइन कराई है। सबसे पहले जब विदेशियों का टर्न था उसमें बाबा ने एक शब्द प्रयोग किया, रिवाइज कोर्स के साथ साथ रियलाइजेशन कोर्स किया है, और भी अंडरलाइन करो, रियल को रियलाइज करो। वैसे आज मेरा जो विषय है उस पर मैं अभी आऊंगा, रियल को रियलाइज करो, जो रियल मैं हूं, जो हूं, जैसा हूं, जहां तक मेरी स्थिति बनी है, या मैंने जितना स्वयं को और स्वयं को के स्वरूप को पहचाना है, बाबा को पहचाना है, जो मैं कहता हूं उसी प्रमाण मेरी कथनी करनी में कितना अंतर है, मैं उसको अंदर जाकर के महसूस करूं, रियलाइज करूं, और उसको महसूसता के साथ साथ परिवर्तन कर दूं। जो चीज बदलने वाली है, बदल सकती है, जब आत्मा अंदर जाकर के महसूस करती है तो उसको सहज परिवर्तन कर सकती है। किस तरह से परिवर्तन हो, तो एक बहुत अच्छी बात बाबा की मुझे याद आती है, क्योंकि कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत समय तक पुरुषार्थ करते भी अपने पुराने संस्कारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाती। पुरुषार्थ करती हैं, रेगुलर क्लास भी करती हैं, अमृत वेले का योग भी अटेंशन से करते हैं, और भी कई बातों का परहेज नियम जो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हैं उनका सब पालन करते हुए भी कई बार हमारे संस्कारों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जैसे थे थोड़ा बहुत लगता है दबाया हुआ है, लेकिन एक कुछ सदा के लिए समाप्त हो जाएं, बदल जाएं, उसके लिए बाबा कहता है बहुत पावरफुल अग्नि स्वरूप का योग चाहिए, योग अग्नि चाहिए, क्योंकि अग्नि के बिना परिवर्तन नहीं होता। हमारी भावनाएं बहुत ऊंची हैं बाबा के प्रति हैं, और भावना प्रधान होने के कारण हम बाबा बाबा जैसे गीत गाते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा, लेकिन सचमुच बाबा क्या है, जो है जैसा है। बाबा कई बार साकार में कहते थे, साकार मुरलियों की बात मैं सुना रहा हूं, कि जिस दिन बच्चे तुम संपूर्ण रीति से पहचान लोगे उस दिन संपूर्ण बन जाओगे। अब आप ये शब्द समझ सकते हो कि पहचान में भी कोई इतना न्यारा और प्यारा है, नाम को भी जानते हैं, रूप को भी जानते हैं, लेकिन वो दिव्य विवेक ईश्वरीय बुद्धि जिस आधार से हम भगवान जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में वो पार्ट बजा रहा है, जो उसकी प्रेरणाएं हैं, जो उसके इशारे हैं, उसको यथार्थ रूप से समझना और समझ करके उस पर कदम रखना, उसको संपूर्ण रीति से फॉलो करना, संपन्नता आ जाएगी। तो इसके लिए हम सभी भावना और विवेक, इन दोनों का कैसे बैलेंस रखें, क्योंकि भावनाएं बहुत जरूरी हैं। यानी भावनाएं जरूरी नहीं है, भक्ति के अंदर भावना के आधार से ही बहुत कुछ भगवान से भक्तों ने प्राप्त किया है, जो कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी प्राप्तियां भी भगवान से उन्होंने भक्ति में की हैं। भले हम कहते हैं भक्ति अंधश्रद्धा युक्त बन गई, भावनाएं अंधश्रद्धा युक्त भावनाएं हो गई, अंधविश्वास हो गया, क्योंकि यथार्थ रूप में परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, संबंध नहीं है। लेकिन जो दिल से भगवान को याद करते हैं, उनको उस याद का रिटर्न देने के लिए भक्ति के अंदर भी भगवान बंधा हुआ है, दिया है रिटर्न। संगम युग पर कई बार विवेक आने से, ज्ञान मिल जाने से हमारी भावनाओं में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सच पूछे तो जो भक्ति की भावनाएं मंदिरों में, मूर्तियों के सामने, देवताओं के सामने, भगवान के मंदिरों में रही हैं, शायद ज्ञान मिलने के बाद उनमें थोड़ा सा अंतर आ गया है। समझते हैं यही तो हमारा रूप है। बाबा को भी कहते तो हमारा बाप है, भगवान है, जिस नजर से भक्ति के अंदर याद किया है, उसमें थोड़ा सा हल्कापन, साधारणता आ गई है। और इस कारण जो उसका रिटर्न मिलना चाहिए, उसमें अंतर पड़ गया है। वास्तव में भावना के बिना योग नहीं है, योग भी भावना का स्वरूप ही है। जब हम बाबा के प्यार में समाते हैं, दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो प्यार के मोती भी आ जाते हैं कि बाबा ने कितना श्रेष्ठ जीवन दी है, कितनी ऊंची प्राप्तियां कराई हैं। जैसे कीचड़े के डिब्बे से निकाल करके अपने दिल तख्त पर बिठाया है, इतना ऊंचा जीवन, इतना ऊंचा भाग्य, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी श्रेष्ठ मत जो बाबा हम बच्चों को दे रहा है, अगर हम उन प्राप्तियों को याद करते हैं तो और भावनाएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती, कि बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया है, कैसे मुझे पाला है, कैसे पढ़ाया है, कैसे आगे बढ़ाया है। यही योग है। वास्तव में योग कोई दूसरी चीज का नाम नहीं, केवल विवेक से मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। कई आत्माएं सूखा सूखा योग करती हैं, बिना रस के, नीरस लगता है। और ऐसा नीरस योग ज्ञान युक्त होने के साथ साथ कभी कभी थका देता है। अनुभव नहीं होते, कोई ऐसी प्राप्तियां नहीं होती, लगता है कि ऐसे ही योग करते रहेंगे, जिंदगी भर यही रटते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। अगर अनुभव नहीं है, अगर भावना प्रधान होकर के हम बाबा नहीं कहते हैं दिल से, मैं समझता हूँ योग भी बोझ बन जाएगा, मेहनत का अनुभव होने लगेगा। और थोड़े देर में ही बैठेंगे, थकावट, सुस्ती, आलस, नींद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बीच में हमारी भावनाएं मिक्स हो जाती हैं, बैलेंस में हम चलते हैं, क्योंकि विवेक जरूरी है, विवेक के आधार से ही ज्ञान, विवेक माना समझ, दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय विवेक, दुनिया वाला विवेक नहीं, क्योंकि विवेकशील बहुत बड़े बड़े विद्वान, पंडित, बहुत बड़े बड़े आचार्य, बहुत बड़ी डिग्रियां लेने वाले, सिर्फ ज्ञान है, समझ है, वर्णन करते हैं, भाषण करते हैं, दूसरों को अपना भी बना लेते हैं उसके आधार से। लेकिन बाबा कहता वो विवेक जो अहंकार को जन्म दे, मैं ये करता हूँ, मेरी बुद्धि की कमाल है, उस विवेक की यहाँ जरूरत नहीं है। ये ईश्वरीय ज्ञान में दिव्य विवेक चाहिए, समझ चाहिए, जिस विवेक के आधार से आत्मा स्वयं को परख सके, स्वयं के कर्मों की गहन गति को परख सके। क्योंकि बाबा ने इस बार कहा है कल मुरली में कि बच्चे विशेष अंडरलाइन करना, कर्मों की गहन गति पर अटेंशन देना। बहुत गहन गति ये है कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, कर लेते हैं, वो बीज है, और वो बीज जहां पर भी पड़ेगा किसी न किसी रूप में उसका फल मुझे रिटर्न में प्राप्त होना ही है। अगर मैंने किसी के लिए उल्टा सोचा है, उल्टा बोला है, बोलते हैं, हम हंसी भी करते हैं, रिटर्न में उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा, उससे हम बच नहीं सकते। इसलिए कर्मों की गहन गति, बाबा कहते गुहे गति है, इसको अंडरलाइन करो। जो कुछ हम कर रहे हैं बिना परिणाम के कुछ भी नहीं है, उसका परिणाम निकलना ही है, मिलना ही है, आज नहीं तो कल। बिना परिणाम के कोई भी कर्म नहीं होता है। इसलिए उस बात को ध्यान पर रख करके हम उस विवेक को ज्ञान मिलने के बाद यूज नहीं करते हैं जिसमें अहंकार समाया हुआ है, और उसके परिणाम स्वरूप ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, अपकार की भावना है। लोग आगे बढ़ते हैं तो उसको आगे बढ़ने में खुशी महसूस नहीं होती, जलन होती है। ऐसी भावनाएं जो जन्म ले रही हैं, वैसा विवेक मुझे अपने पास नहीं रखना है। बाबा ने कहा बच्चे इस विवेक को मार दो, तुम्हें मैंने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। बुद्धि है, समझ है, यथार्थ क्या है, रांग क्या है, राइट क्या है, लेकिन भावनाएं उसके साथ साथ जरूर हो, क्योंकि बिना भावनाओं के हम परिवार का सुख नहीं ले सकते। ईश्वरीय परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा बाबा है, न परिवार का सुख, न बाबा का सुख, न बाबा के यज्ञ के ब्रह्मा भोजन का सुख, न भोग का सुख, न अमृत का सुख। जो कुछ नियम बाबा ने बनाए हैं वो हमारे कल्याण के लिए हैं। हम उसमें केवल ये विवेक यूज न कर दें कि इसमें क्या है, क्या मिलता है इससे। वही भक्ति की तरह यहाँ भी अमृत मिलाया जाता है, वही भक्ति की तरह यहाँ भी भोग लगाया जाता है। बाबा एक तरफ कहता भक्ति दुर्गति है, और दूसरी ओर हम सब भी वही कर रहे हैं। बाबा कहता बच्चे भक्ति अज्ञानता के बस पहचान न होने के कारण अंधश्रद्धा का रूप ले गई, लेकिन भक्ति से भगवान मिला है, ये ध्यान रखो। पुराने भक्तों को ही भगवान ने ज्ञान दिया है। अगर आपने भक्ति नहीं की होती तो ये फल नहीं मिलता। हमें जो इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, जो इतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध मिल रही है, यहां तक भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो जितना पुराना भगत है, जिसने जितनी अधिक भक्ति की है, उतना वो ज्ञान में आगे जाएगा, नंबर आगे लेगा। तो भक्ति दुर्गति का ही रूप नहीं है, नीचे गिराने वाली ही नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा युक्त होने के कारण भक्ति के लिए बाबा को ऐसे शब्द यूज करने पड़े हैं कि बिना पहचान के जहां आया कोई टिवाटे की पूजा कर रहा है। तीन रास्ते जहां मिलते हैं, आपने देखा होगा, जहां तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहता है बाबा, और उस तीन रास्ते की टिवाटे की लोग पूजा करते हैं, वहां पर भी तेल चढ़ा करके आते हैं, फूल डाल के आते हैं, वहां भी पैर माथा टेक करके आते हैं। तो बाबा कहता है ये सब भक्ति जो है तत्वों की भक्ति होने लगी, देहधारियों की भक्ति होने लगी, भूत पूजा होने लगी, भूत पूजा नहीं, भूत पूजा, जड़ की पूजा होने लगी। इसलिए बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवाता है, बच्चे ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं, ज्ञान युक्त बनो, विवेक युक्त बनो, समझ का प्रयोग करो, अपने आप को पहचानो, अपने बाबा को पहचानो, अपने घर को पहचानो, समय को पहचानो, और पहचान करके याद करो। पहचान करके सिर्फ ऐसा नहीं मैं जान गया हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैं तो नॉलेजफुल बन गया हूं। जब ऐसा कभी भी विवेक जागृत होता है, ज्यादा बुद्धि खुल जाती है किसी की, तो हंसी की बात मैं आपको बताता हूं कि उनको पता मुझे क्या लिखते हैं, कई पत्रों में लिखते हैं, मुरलिया तो वही है, कई बार पढ़ चुका हूं, पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते मुरली तो हमें कांठाग्र हो गई है, पूरी याद है। अब याद कर लिया है, बाबा हमें याद करने के लिए मुरली सुना रहा है या उसका स्वरूप बनने के लिए सुना रहा है? पढ़ करके हम स्वरूप याद कर लिया और हम होशियार हो गए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर हमने क्लासेस कराना शुरू कर दिया, भाषण करना शुरू कर दिया और हम समझे हम ज्ञानी बन गए। बाबा कहता ये विवेक नहीं चाहिए, जब तक जीना है तब तक सीखना है। पढ़ाई से कभी भी ऐसे नहीं मैंने सब कुछ पा लिया है, इसके लिए बाबा नहीं कहता, इसके लिए रेस करो और प्राप्त करो। भरपूरता हमारी जो खजानों की है, जो कल बाबा ने कहा सब खजाने जैसे आत्मा उनसे संपन्न हो जाए, अच्छा अच्छा चिंतन करते करते चार पांच प्रकार की भावनाएं हमारी सदा के लिए इमर्ज रहे। जिसका अच्छा चिंतन चलता है, श्रेष्ठ चिंतन चलता है, शुभ चिंतन चलता है, उसकी सबसे अच्छी भावना शुभ भावना बन जाती है और वो शुभ भावना बहुत बड़ा कार्य करती है, जादू का कार्य करती है। और वो जादू का कार्य ऐसा होता है कि अगर कोई रुकावट है, विघ्न है, परिस्थिति है, कोई आत्मा मेरे आगे बहुत माया का रूप लेकर के बार बार आती है, हमारी शुभ भावना का जादू मंत्र उस आत्मा की बुद्धि को परिवर्तन कर देता है। लेकिन वो तब करता है जब उस भावना के अंदर किसी भी प्रकार का पर्सनल स्वार्थ नहीं है। अगर वो निस्वार्थ भावनाएं हैं, बड़े हद बेहद के दिल वाली भावनाएं हैं और बहुत कल्याण की भावनाएं हैं, वो भावनाएं बाबा ने हमारी बनाई, जो कल्याण की भावनाएं थी, अशुभ भावनाएं थी, जो हम ऐसे ही सोच लेते थे, ऐसा कुछ भी नेगेटिव हमारे संकल्प, साधारण संकल्प भी जो चल जाते थे, बाबा कहता बच्चे उन संकल्पों से तुम्हारा चिंतन बिगड़ा और वो चिंतन बिगड़ते बिगड़ते तुम्हारी भावनाएं अशुद्ध हो गई, अशुभ हो गई। इसलिए उस भावनाओं में एक तो अहम आ गया, दूसरा वहम आ गया, फिर ईर्ष्या आई, द्वेष आया, नफरत आई, घृणा आई, हद की कामनाएं आ गई, मैंपन आ गया, मेरापन आ गया, सब प्रकार के दोष एक दूसरे के अवगुणों को देखने लगे और आत्मा जो इतनी महान थी, श्रेष्ठ थी, वो धीरे 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 अपनी सब कलाएं खो बैठी। अब बाबा हम सबको फिर से उस सर्व गुणों से संपन्न, सर्व कलाओं से संपन्न बनाना चाहता है, तो हमारी भावनाओं में परिवर्तन करता है, हमारी भावनाएं दिव्य बने, अलौकिक बने। और वो भावनाएं केवल ऐसे नहीं हम किसी के भावुक बन जाएं, किसी पर प्रभावित हो जाएं, हाँ ये बहुत अच्छा है, बाबा कहता ये भावना नहीं जो फंस जाएं या फंसा लें, ये भावनाएं रांग है। लेकिन भावना ये जरूर है, ये भगवान का बच्चा है, ये भाग्यशाली है, इसने बाबा को बाबा कहा है, इसने बाबा को पहचाना है, इसने अपनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, इसलिए उसकी विशेषताएं हमारी नजरों के सामने रहे। इस भावना से अगर हम देखते हैं तो उस भावना में बहुत बड़ी शक्ति है, वो आत्मा समीपता का अनुभव करती है, वो अपनेपन का अनुभव करती है, हमारी भावनाओं का वायुमंडल उसको लगता है कि हाँ ये हमारे हैं। लेकिन अगर हमारी किसी के प्रति ऐसी भावनाएं हैं, अशुभ हैं, अकल्याण की हैं, या हमारे अंदर की कुछ वैसी जलन है, या हम उसकी अवगुणों को नोट करके अपने अंदर रख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी भावनाओं का प्रभाव उस आत्मा के साथ संबंधों में वैर पैदा कर देगा। मित्रता की भावना एक दूसरे को मिलाती है और शत्रुता की भावना दूरियां बढ़ा देती है। तो संगम युक्त पर बाबा हम सब की भावनाओं को चेंज करता है। तो जब मुझे टॉपिक दिया गया तो मेरा एक चिंतन चल रहा था कि देखो बाबा ने पहले पहले अपना बना करके हम सबको जब कहा तुम मेरे बच्चे हो, तो अपना बना करके सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन किया, हमारी दृष्टि बदल दी। हमारा जो दृष्टिकोण माना देखने का तरीका था, देह को देखना, देह के बारे में सोचना या अपने आप को बहुत समझदार समझना, देहभान में रहना, कभी देह का सुंदरता का नशा किसी को, कोई को पढ़ाई का नशा, कोई को अपने पद और पोजीशन का नशा, कोई को अपने कुल और जाति का नशा, कितने प्रकार के उल्टे नशे देह अभिमान के कारण आ गए। और उन नशों के कारण आत्मा विवेक होते हुए, विवेक था ऐसा नहीं, विवेक ही नहीं था, विवेक था, लेकिन उस विवेक ने, उस बुद्धि ने, अभिमान वाली बुद्धि ने मुझ आत्मा का पतन किया, गिराया। अब बाबा उस दृष्टिकोण को बदल देता, बच्चे देखने के नजरिए को चेंज करो, क्या देख रहे हो तुम। जब किसी आत्मा से, किसी भी संबंध संपर्क वाले से मिलते हो, जो आत्मा आपके सामने आती है, उसको देखो इस भ्रकुटी के बीच में कैसे ये हीरा चमक रहा है, आपका आपकी नजर उसके मस्तक पर जाए। दृष्टिकोण का परिवर्तन किया बाबा ने, और ये कितना सुंदर अभ्यास है अगर हम सभी इस अभ्यास को करते हैं तो। मैंने तो देखा है इसके रिजल्ट में, जितना हमने इसको अभ्यास में लाया है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। जैसे बाबा ने कितना अभ्यास किया साकार में, शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ खुद भी पढ़ा और सबको कहा है, बार बार लिखो, ये आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा भी अपने परिवार के बीच में अपने बच्चे को कहता, ये नारायण आत्मा है, ये निर्मल शांता आत्मा है, ये जसोदा आत्मा है, ये आत्मा है। बाबा ने सैकड़ों बार ये बात लिखी और लिख लिख करके पक्का किया, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, पाठ पक्का कर लिया। दूसरों को कहा, बच्चे कम से कम इस बात को 108 बार लिखो, रिवाइज करो, पक्का करो, इस देहभान को भुलाने के लिए मेहनत करो, नहीं तो भूलेगा, इतना सहज नहीं है, सिर्फ ऐसे कह दिया मैं आत्मा हूँ। पक्का करो, इस बार बार रिवाइज करो, इस देखने के दृष्टिकोण को चेंज करो, नहीं तो जितना बार आपकी देह पर दृष्टि जाएगी, किसी न किसी प्रकार के देह विमान के अंश उसके वाइब्रेशन से एक दूसरे को टच करेंगे और विकर्म बनता जाएगा। इसलिए आत्मा अगर विक्रमाजीत बनना चाहती है, कर्मातीत बनना चाहती है, तो उसके लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ है, अपने आप को पहचान करके, विवेक युक्त हो करके, दिव्य विवेक से अपने स्वरूप में स्थित रहे, और फिर भावना प्रधान होकर के बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करे, संस्कार चेंज हो जाएंगे। सिर्फ साधारण याद है, मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूँ, बाबा ने मुझे अपना बना लिया, खाते पीते मुझे तो याद ही रहता है, मैं तो बाबा का ही खाता हूँ, मैं तो बाबा की ही सेवा करता हूँ, मेरा तो बाबा के सिवाय कोई है ही नहीं, और क्या है मेरा, एक है सिर्फ कहना, लेकिन एक है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना। तो मैं समझता हूँ अगर भावना और विवेक दोनों तराजू बराबर हो, केवल भावनाएं नहीं चाहिए, लेकिन उसमें दिव्य विवेक भी साथ साथ हो, ज्ञान युक्त बन करके, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा भी बाबा को प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी तो आत्मा भी चाहिए, और योगी तो आत्मा के लिए दिव्य विवेक चाहिए। इसलिए दिमाग वाली याद नहीं, इसलिए बाबा कई बार यूज करता है शब्द, एक है मेरे दिमाग वाले बच्चे जो दिमाग से बहुत अच्छा योग करते हैं, लेकिन एक है बहुत भावना वाले जो पढ़े लिखे इतना नहीं है, लेकिन दिल में बाबा के प्रति प्यार है और बहुत प्यार से बाबा बाबा कहते हैं, वो बाबा को सामने देखते हैं, अनुभव करते हैं। मैं तो इस सभा में भी कई बार देखता हूँ, एक बार एक भाई ने मुझे बाबा जाने के बाद आके बोलता है, बाबा कब आएगा? ने क्या बोला? बोला बाबा कब आएगा? बाबा आया, मुरली चलाई, आपको पता नहीं चला? अब विवेक यूज कर रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, वो सोचता था कोई बाबा ऐसे साकार में आएगा, वतन से फरिश्ता उतरेगा और मैं इन आंखों से देखूंगा। उसको तो पता ही नहीं चला कि दादी के अंदर वो प्रवेश हुए, अपना प्रभाव डाला, मुरली चलाई, दृष्टि दी, बच्चों से मिले और चले गए। उसने तो समझा ही नहीं, पूरा टाइम बैठा रहा सामने और उसको पता ही नहीं चला। और भावना वाली आत्माएं सब बाबा के सामने जब बैठती हैं, देखती हैं बाबा ऊपर से आया, लाइट स्वरूप में दादी के तन में प्रवेश हुआ, दृष्टि दिया, मिलन मनाया, बिल्कुल उनको स्पष्ट दिखाई देता है। सभा के बीच में भी बैठे होंगे, कहीं कोने में बैठे होते हैं, उनको अनुभव होता है कि बाबा की प्रवेशता हुई है, वो आ गया है, लाइट माइट का स्वरूप बाबा इसमें प्रवेश हो गया, और वाणी चलाई है, बच्चों से मिलन मनाया और फिर बाबा चला गया। देखते हैं कई लोग, इन नेत्रों से भी कई बार अनुभव होने लगते हैं कि बाबा की कैसे प्रवेशता हुई, भावना के आधार से। और जो विवेक यूज करते रहते हैं उनको पता भी कई बार नहीं चलता है। तो बाबा कहता है, बच्चे ऐसा विवेक यूज नहीं करो, यहाँ पर भावना भी साथ साथ चाहिए। क्योंकि बाबा को नहीं तो कहेंगे क्या जरूरत है, बाबा तो कहता है मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, फिर बाबा को भोग लगाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि दादी खा रही होगी, किसको खिलाया जा रहा है, बाबा तो कहता मैं खाता ही नहीं हूँ, भोग लगाया दादी ने, बाबा को खिलाया, हम सब ने देखा, हमारी भावना थी कि नहीं थी? थी, कईयों की भावना ही नहीं बैठती, क्या है ये सब। लेकिन अगर इस बात को विचार किया जाए, अगर खिलाने वाले को हम आफन नहीं करेंगे तो क्या कहा बाबा, क्या कहता है, अगर जिस जो खिलाने वाला है, जो दाता है, अगर हम उसको स्वीकार ही नहीं कराएंगे, उसको पूछेंगे नहीं, तो कहेगा बच्चे तुम चोर हो, मैंने दिया और तुम मुझे याद भी नहीं करते हो, मैं वासना लेता हूँ, भले नहीं खाता हूँ लेकिन मेरी दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि के आधार से उसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए नियम बना करके जो भोग बनता है, जो भोजन बनता है, नियम पूर्वक उसको बाबा को ऑफर करना, स्वीकार कराना, भावना प्रधान होकर के बहुत दिल से कि बाबा आओ इस पर दृष्टि डालो। आप वतन से भी दृष्टि डालोगे तो इसमें शक्ति आ जाएगी, आप जरूर खाएंगे, आप जरूर वासना लेंगे। तो भावनाएं यूज करो जिसमें वो भोजन में शक्ति आ जाए। बाबा खाता या नहीं खाता ये प्रश्न में जाने की, विवेक यूज करने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ भावनाएं यूज होती है, उसमें शक्ति भर देता है बाबा। तो इसलिए दोनों बातों का बैलेंस, तो एक तो हमारे बाबा ने हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन किया, दूसरा भावनाओं का भी परिवर्तन किया। जो हमारी अंधश्रद्धा युक्त भावनाएं थी, जो हम हरेक के आगे जाकर के माथा टेकते थे, चरण छूते थे, बिना परिचय बिना जानकारी के सिर्फ गए और ऐसे ही उनके पैर छूने लगे, मूर्तियों के आगे लेट गए, बाबा ने उन भावनाओं को जरूर चेंज किया और कहा बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे हो। जैसे कल बाबा को जब नए नए मेहमान मिल रहे थे तो माताओं ने पैर छूना शुरू किया तो बाबा ने क्या कहा, देखा था आपने, देखा होगा, बाबा ने कहा तुम तो शिव शक्तियां हो, महान हो, तुम दृष्टि लो, सामने देखो, पैर नहीं छो, नीचे नहीं करो। बाबा ने एकदम ऊंचा उठा दिया है, इतना महान बना दिया है। तो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा और महान बना रहा है, ऐसा नहीं भावनाएं हमारी कम हो गई पैर नहीं छुआ तो, रिस्पेक्ट है, आदर है, सत्कार है, लेकिन हम जानते हैं प्राप्ति किसमें है, चरण छूने से क्या मिल जाएगा। चलो बाबा कह देगा बच्चे जीते रहो, बस जीते रहेंगे क्या। लेकिन अगर बाबा की शक्ति मिल गई, दृष्टि मिल गई, बाबा ने एक दृष्टि से, नजर से निहाल कर दिया, तो एक नजर की दृष्टि से ही आत्मा कितने जन्मों के लिए निहाल हो जाएगी, कितने जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद भी प्राप्त कर लेगी, ये भावना भी है। तो हम सभी भावना और विवेक, ज्ञान और बहुत स्नेह, इन दोनों का बैलेंस रखते हुए ज्ञानी तू आत्मा भी बने, समझदार भी बने, यूज करें ज्ञान को, और साथ साथ भावना प्रधान बन करके बहुत स्नेह और श्रद्धा के साथ जो नियम बनाए हैं बाबा ने, उन नियमों में भलाई है, कल्याण है, और हर एक चीज को स्वीकार करते हुए नम्रचित बन करके कट न करें। कई लोग जो विवेकवान हो जाते हैं, जिनमें समझ आ जाती है, जो अपने आप को समझदार थोड़ा भी समझने लगते हैं, क्या करते हैं, हर बात में क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों, कहाँ संदेश जाती है, ये जो संदेश लाती है शायद ये मनमत वाला है, कहाँ बाबा मिलता है, कैसे कैच करती है, कई बारे कई प्रश्न टीचर्स को भी परेशान करने वाले पूछने लगते हैं। टीचर्स भी कहते भाई जी अभी इसका क्या मैं उत्तर दूं। बाबा कहता है यहाँ पर भावनाओं का प्रयोग करो, विवेक का नहीं। कई प्रकार की भावनाएं भी जरूरी हैं। कई बार बाबा कहता है बच्चे उसमें भला है, उसका भी भाड़ा मिलता है। तो सच्चे दिल की भावनाएं, दिल की याद बाबा की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। लेकिन विवेक युक्त याद, ज्ञान युक्त याद, ईश्वरीय विवेक को जहां हम यूज कर रहे हैं, समझ से करते हैं, तो पावरफुल याद हमारे विकर्मों को विनाश कर देती है, पापों को नाश कर देती है। तो दोनों का बैलेंस रखते हुए हम इस मार्ग में जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि बाबा ने हमारी भावनाओं को ठुकराया नहीं है, हमारी भावनाओं को तोड़ा नहीं है, लेकिन हमें जोड़ना सिखाया है। सब में भावनाएं हैं, ऐसे नहीं गुरुओं में भावनाएं नहीं है। बाबा कई बार उनके बारे में कहता है कि अगर ये सन्यासी, ये गुरु, ये महात्माएं नहीं होते तो ये दुनिया जल करके खाक हो जाती। पवित्रता के बल से इस सृष्टि को थमाया है, उनके अंदर भी कुछ शक्ति है, इसलिए उसको भी रिस्पेक्ट दो, उसको भी दिगाड़ दो, भले पैर नहीं छुओ लेकिन स्नेह रखो, सम्मान दो। जिस तरह से उन्होंने इतनी ऊंची स्थिति बनाई है, जिस कलयुग में कई बच करके रह रहे हैं, वो भी उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। हम सबको प्राप्तियां हैं, बाबा की पालना है, परिवार की पालना है, ऊंचा ज्ञान है, हम सब भगवान की आज्ञा प्रमाण पालन कर रहे हैं, इसलिए उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। और वो बिना ज्ञान के, बिना समझ के, अपनी तपस्या के बल से, हठ के बल से कम पालन तो कर रहे हैं, सृष्टि को थमा तो रहे हैं, ब्रह्मचर्य को अपना तो रहे हैं, इसलिए उनकी भी महानताएं हैं, उनकी भी विशेषताएं हैं, उसको भी बाबा रिस्पेक्ट देता है। तो हमारी भावनाओं को तोड़ा नहीं है। हम कई बार मंदिरों में जाएंगे ऐसे ही हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। बाबा कहता है कि अगर कोई पुजारी नाराज हो रहा, देख रहा है, क्या है ये, नास्तिक हो गए क्या सभी, ये सफेद ड्रेस वाले आते हैं, ना पैसा चढ़ाते हैं, ना हाथ जोड़ते हैं, ना प्रसाद लेते हैं, क्या इनकी भावनाएं हैं, सब भावनाएं इनकी खत्म हो गई। बाबा कहता बच्चे अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो प्रसाद लेने में क्या हर्ज है, नहीं खाते हो स्वीकार तो करो, स्वीकार करके आप प्रसाद को ले आएंगे, दूसरे के हाथ में देंगे, वो भी खा के प्रसन्न हो जाएगा। अगर कोई कारण से लेना पड़ता है तो हम डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते ना, भावनाएं तो हैं। तो इसलिए भावना प्रधान भी हैं हम, लेकिन विवेक है कि हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी योग युक्त स्थिति को कोई भी प्रकार की बातें, कोई भी प्रकार की ऐसी भावना डिस्टर्ब न कर दे। इसलिए दोनों का बैलेंस रख करके हम इस मार्ग के अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हर क्षेत्र में। बाबा कहता है एक सब्जेक्ट नहीं लेकिन चारों सब्जेक्ट में नंबर वन आने का आधार है भावना और विवेक का बैलेंस। ओम शांति।